अभी के लिए बस इतने से काम चला लिया मैंने, पर आज रात मुझे पूरी की पूरी तुम चाहिए गिफ्ट में, फिर मैं फुर्सत में अपनी मिष्ठी को चखूंगा। आरवी पहले ही स्तब्ध थी, अब तो आंखें फाड़े उसको देखने लगी। उसकी बात का मतलब समझते हुए उसके गाल और कान शर्म से लाल हो गए। उसने शान पर से निगाहें फेर ली और किसी तरफ मुंह में मौजूद केक को गले के नीचे उतारने के बाद निगाहें चुराते हुए बोली, अब हमें चलना चाहिए। शान ने उसको जरा भी और परेशान नहीं किया और उसका हाथ थामकर बाहर चला आया। आरवी ने साथ में बुके और शोपर भी ले लिया। जैसे ही गेट खुला, गेट पर खड़ी रश्मि झट से आकर आरवी के गले से लग गई और चमकते हुए बोली, आज मैं बहुत 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 से भी ज्यादा खुश हूँ। फाइनली तेरे और जीजू के बीच सब ठीक हो गया। अब तू वापस उनके पास चली जाएगी और देखियो, आज मैं खुद तैयार करूंगी तुझे। आरवी पहले तो उसके अचानक गले लगने से चौंक गई, फिर उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। कुछ पल बाद रश्मि उससे अलग हुई और मुस्कुराकर बोली, शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो तुझे। थैंक यू, आरवी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। जब तक यहाँ दोनों सहेलियों की बातें चल रही थीं, रेहान भी शान को मुबारकबाद दे चुका था। अब रश्मि ने शान को विश किया और रेहान ने आरवी को। आरवी ने दोनों को देखा और मुस्कुराकर बोली, आप दोनों यहाँ हैं तो बाकी सब कहाँ हैं? हम भी यहीं हैं बेटा। कुछ दूरी पर से अर्पिता जी की आवाज़ आई तो सबकी निगाहें उस तरफ घूम गई। अमरजीत जी, अर्जुन, सुयश जी, सुभाष जी, सावित्री जी, अर्पिता जी, सृष्टि, कार्तिक, छाया, रश्मि के पेरेंट्स सब वहाँ खड़े थे। उनके साथ नन्ही अंशु भी थी। अंशु अपने नन्हे नन्हे कदमों से दौड़ते हुए उनके पास चली आई और शान आरवी के पैरों से लिपटते हुए चहकते हुए बोली, मम्मा, डैडा, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सली। बेचारी नन्ही सी अंशु ठीक से बोल भी नहीं पाई, पर उसके विश ने सबके लभों पर मुस्कान खिला दी। आरवी ने उसको अपनी बाहों में उठा लिया और प्यार से उसके गाल को चूमकर बोली, थैंक यू बच्चे, पर आपको किसने बताया कि आज मम्मा डैडा की वेडिंग एनिवर्सरी है? डैडा ने बताया और ये भी कहा कि आज मम्मा और अंशु वापस होम चले जाएंगे और डैडा के साथ रहेंगे। अंशु की खुशी देखने लायक थी। शान के साथ रहेगी ये सुनकर ही वो इतनी खुश थी जिसे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि इतने वक्त तक शान से दूर रहना कितना मुश्किल रहा होगा उसके लिए। आखिर जन्म से शान ही उसका माँ और बाप दोनों बना था, तो उससे उसका जुड़ाव ज़्यादा था। आरवी ने उसका जवाब सुनकर उसको अपने सीने से लगा लिया और शान को देखते हुए मुस्कुराकर बोली, हाँ बेटा, अब से मम्मा, डैडा और हमारी डॉल सब साथ साथ रहेंगे। अब तक बाकी सब भी उनके पास चले आए थे। सावित्री जी ने शान और आरवी को साथ देखा, फिर अनुपमा जी को देखकर मुस्कुराकर बोली, समधन जी, आज के शुभ दिन हम अपनी बहू को वापस अपने घर लेकर जाना चाहते हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो। आरवी आपकी ही बहू है, जैसा आप लोग चाहेंगे वैसा ही होगा। हम तो उन्हें कब से कह रहे हैं कि बहुत दिन रह ली हमारे साथ, अब अपने घर लौट जाएं और अपने परिवार को संभालें, पर वही नहीं सुनती थी हमारी। अगर वो अपने घर लौटती हैं तो हमें तो खुशी ही होगी। अनुपमा जी ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। शान और आरवी ने साथ मिलकर सब बड़ों के पैर छुए और सबने उन्हें ढेरों आशीर्वाद दिए। सृष्टि और कार्तिक ने भी दोनों को बुके देकर विश किया। छाया ने भी दोनों को मुबारकबाद दी, वो भी आज बहुत खुश थी। अर्जुन की बारी में आरवी उसके पैर छूने को झुकी, वही शान गले लगने को आगे बढ़ा। ये देखकर सब ठहाके लगाकर हंस पड़े। शान और आरवी ने चौंकते हुए एक दूसरे को देखा। शान झेपते हुए झुककर अर्जुन के पैर छूने लगा, पर उसने दोनों को गले से लगाकर मुस्कुराकर कहा, हमेशा साथ रहो और खुश रहो। उसके बाद उसने शान को वार्निंग भरे लहजे में कहा, इस बार तुम्हारी हर गलत माफ की है, पर अगर दोबारा तुमने आरवी को तकलीफ पहुंचाई, उसको हर्ट किया या रुलाया, तो दोस्ती जाएगी भाड़ में और तुझे आरवी के भाई से निपटना पड़ेगा। तब कोई माफी नहीं मिलेगी तुझे, सिर्फ सजा मिलेगी। और अपनी बहन को मैं उसके घर ले आऊंगा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। वैसे तो उसकी चेतावनी कम धमकी सुनकर शान को डरना चाहिए था, पर उसने उल्टा मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं ऐसी नौबत ही नहीं आने दूंगा। इतनी मुश्किल से मानी है, दोबारा नाराज करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक बार फिर वहां ठहाकों की आवाज गूंज उठी। प्ले तो खत्म हो चुका था, लोग भी जा चुके थे, पर मीडिया का तांता लगा था स्टेडियम के बाहर, लेकिन अभी उनसे मिलने का वक्त नहीं आया था। शान वहां से ऑफिस के लिए निकल गया। उसके साथ सृष्टि और कार्तिक भी थे। रेहान अर्जुन के साथ मिलकर अनुपमा जी, रश्मि के पेरेंट्स, रश्मि, छाया, अंशु और आरवी के साथ वहां से निकल गया। बाकी सब भी चले गए। रश्मि आरवी के साथ उसके घर ही रुक गई, जबकि सबको छोड़ने के बाद रेहान भी ऑफिस के लिए निकल गया। अर्जुन भी अमरजीत जी के साथ घर चला गया। आज वो दोनों भी बहुत खुश थे। आखिर आरवी की जिंदगी में शान के साथ उसकी खोई खुशियां भी लौट आई थी, बड़ी मुश्किलों के बाद। पर अब सभी बिखरे रिश्ते जुड़ चुके थे। सब ठीक हो गया था। प्ले खत्म होते होते 12 बजे गए थे। घर पहुंचकर आरवी ने अंशु के कपड़े बदले, खुद चेंज किया। रश्मि ने भी उसके कपड़े पहने। सबने साथ में लंच किया। उसके बाद आरवी ने अंशु को सुला दिया और फिर दोनों सहेलियां बालकनी में चली आईं। बाहर धूप नहीं थी बल्कि सुहावना मौसम था और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। कुछ देर यहाँ वहाँ की बातें और प्ले के बारे में डिस्कस करने के बाद आरवी ने उसके तरफ निगाहें घुमाते हुए सवाल किया, रश्मि तू तो मिस्टर मल्होत्रा से बहुत चिढ़ती थी, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि तू मुझे छोड़कर उनका साइड लेने लगी? ये वही सवाल था जो कुछ दिनों पहले रश्मि ने उससे किया था और इसका जवाब भी देना चाहती थी, पर आरवी सुनने को ही तैयार नहीं थी। पर आज वो खुद उससे यही सवाल कर रही थी। रश्मि ने पलटकर उसको देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, क्योंकि मैं काफी पहले समझ गई थी कि जीजू तुझसे नफरत नहीं करते बल्कि बहुत चाहते हैं तुझे। तुझको किसी मुश्किल में नहीं पड़ने देना चाहते, तुझे महफूज रखना चाहते हैं, और वो नफरत और गुस्सा सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं ताकि उसके पीछे तेरे लिए अपने प्यार को छुपा सके और तुझे मजबूर कर सके उनसे दूर रहने के लिए। रश्मि की बात सुनकर आरवी की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने चौंकते हुए सवाल किया, तुझे ये कब और कैसे पता चला? अब तो उस बात को काफी वक्त हो गया। जब विहान तुझे लेकर चला गया था उससे पहले ही जीजू से मुलाकात हुई थी मेरी। शायद उन्हें पहले से पता था कि विहान फिर से तेरी जिंदगी में लौटने की कोशिश करने वाला है, इसलिए मुझसे मिलकर उन्होंने विहान और तेरे बारे में सारी जानकारी हासिल की थी। तभी उनके बातों और चेहरे के भाव से मैं समझ गई थी कि उनकी नफरत और गुस्सा सिर्फ ऊपरी दिखावा है, असल में तो वो बहुत चाहते हैं तुझे। और मेरा ये यकीन उस वक्त और पक्का हो गया जब विहान वाले हादसे के बाद तू सदमे में थी और जीजू ने मुझे फोन करके तुझसे मिलने मल्होत्रा निवास को कहा था। सारी बात नहीं बताई थी पर उनकी आवाज उनकी चिंता जाहिर कर रही थी। वो परेशान थे तेरे लिए और दोनों ही बार उन्होंने मुझे तुझे कुछ भी बताने से मना कर दिया था ताकि तू उनसे कोई उम्मीद ना बांध ले। मतलब साफ था कि फिक्र करते थे वो तेरी, पर दिखाना नहीं चाहते थे वरना तुझे खुद से दूर नहीं रख पाते। और बाद में मुझे वजह पता चली कि क्यों वो तुझे खुद से दूर रखने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि उन्होंने जो भी किया वो पूरी तरह से सही थे, पर पूरी तरह से गलत भी नहीं थे। उन्होंने जो भी तेरे साथ किया सरासर गलत था, पर उनका इंटेंशन गलत नहीं था। और अगर दर्द में तू थी तो तुझसे कम तकलीफ में वो भी नहीं थे। फिर अब तो तूने भी उनसे हर दर्द का बदला ले लिया है, तो बीती बातों को भुलाकर अब उनके साथ एक फ्रेश शुरुआत कर। अतीत की कड़वाहट को मिटाकर अपने रिश्ते में प्यार की मिठास भर। देखियो अब की बार तुझे इस रिश्ते से सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही मिलेंगी।
आरवी ने सर हिला दिया और उसके गले से आ लगी। फिर दोनों मिलकर उसका और अंशु का सामान पैक करने लगे। मल्होत्रा निवास में आरवी शान के स्वागत की और पार्टी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। प्ले खत्म हो चुका था पर उसके खुमारी लोगों के सर पर चढ़ चुकी थी। खासकर एंड का सीन तो हर जगह वायरल हो चुका था। उस पर लोगों के कमेंट और लाइक्स की बारिश हो रही थी। बड़ी तादाद में ऑनलाइन नफरत भरी मोहब्बत की दास्तां को सर्च किया जा रहा था और देखा जा रहा था। इस प्ले ने कुछ ही घंटों में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तहलका मचा दिया था, जिसकी कुछ वजहें थीं, जिसमें सबसे पहली वजह थी शान और आरवी का साथ होना। अंशु के किरदार को भी सबका खूब प्यार मिल रहा था। एक्टिंग तो उम्दा थी ही, साथ ही सेटअप, बैकग्राउंड सब कमाल का था। स्टोरी भी जबरदस्त थी, हर तरह के इमोशन से भरी प्यार की एक अनोखी दास्तां जो लोगों के दिलों पर अपनी गहरी छाप छोड़ती जा रही थी और उनकी जुबान पर चढ़ी हुई थी। उम्मीद से बढ़कर परफॉर्म कर रहा था ये प्ले, जिससे सबको खूब फायदा होने वाला था। शान वैसे तो शाम को आने का कहकर गया था, पर शाम की जगह वो दोपहर के 4 बजे ही आरवी के घर पहुंच गया। आरवी तब रूम में थी रश्मि के साथ। शान अनुपमा जी से मिला तो वो उसके खातिरदारी में लग गई और छाया को आरवी को तैयार होने को कहने को भेज दिया। छाया तुरंत सीढ़ियों की तरफ दौड़ गई। रूम में आरवी और रश्मि जस्ट अभी पैकिंग करके बैठी ही थी कि छाया वहां पहुंच गई और आरवी को देखकर हांफते हुए बोली,
भाभी भैया आ गए हैं, आंटी जी ने आपको तैयार होने को कहा है।
आरवी और रश्मि पहले ही उसकी हालत को देखकर हैरान थे। उसकी बात सुनकर दोनों और ज्यादा चौंक गए। उन्होंने पहले हैरानी से एक दूसरे को देखा, फिर आंखें बड़ी बड़ी करके छाया को देखने लगी। आरवी ने हैरानगी से उससे सवाल किया,
इतनी जल्दी आ गए वो? जी नीचे ही है, आप तैयार हो जाइए, मैं अंशु बीबी को उठाकर तैयार कर देती हूँ।
बेचारी आरवी और क्या ही करती, उसने सर हिला दिया। छाया अंशु को उठाने लगी। आरवी ने अब तक शॉपर खोलकर देखा तक नहीं था कि उसमें आखिर है क्या, और अब टाइम भी नहीं था। उसने शॉपर उठाया और बाथरूम में घुस गई। शान नीचे लिविंग रूम में अनुपमा जी के पास बैठा था और बार बार सीढ़ियों की तरफ देख रहा, और उसकी बेचैन निगाहों को इंतजार था आरवी का। कुछ देर बाद छाया अंशु के साथ सीढ़ियों से उतरती नजर आई। आधी नींद में उठाकर उसे तैयार किया गया था तो वो छाया की गोद में ही सो गई थी। शान ने देखा तो आगे बढ़कर अंशु को अपनी बाहों में थाम लिया। अंशु बड़ी ही शौक से उसके कंधे पर सर रखकर सो गई। शान के लब मुस्कुरा उठे और वो उसे लेकर सोफे पर आकर बैठ गया।